मेरे अजीज दोस्तों नमस्कार। आज 15 फरवरी 2018 है और आज के इस afis.com के लाइफ मैनेजमेंट में मैं डॉक्टर विजय अग्रवाल आप सभी का हार्दिक रूप से स्वागत करता हूं। मित्रों, आप सबको ध्यान होगा कि मंगलवार के लाइफ मैनेजमेंट में मैंने आपसे एक वायदा किया था और वायदा यह था कि मंगलवार को मैं आपसे खासकर वैलेंटाइन डे को ध्यान में रखते हुए प्रेम पर कुछ बातें करूंगा और फिर बुधवार को छुट्टी थी और बृहस्पतिवार को मैं शिव, भगवान शिव के बारे में आपसे कुछ चर्चा करूंगा। तो मित्रों, मैं आज अपने उस वायदे को ही निभाने के लिए आप सबके सामने मौजूद हूं और इससे पहले कि मैं भगवान शिव के बारे में बात करूं, मैं एक बात स्पष्ट करना चाहूंगा कि मेरी जो बात है उसे आप धार्मिक रूप में न लें, मेरी जो बात है उसे आप आध्यात्मिक रूप में न लें, न हिंदू से जोड़ करके देखें, न संप्रदाय से जोड़ करके देखें, न भारत से जोड़ करके देखें। तो फिर आप कहेंगे कि फिर जोड़कर किससे देखें। मित्रों, इसे आप विशुद्ध रूप से एक एकेडमिक बात समझें। एकेडमिक का मतलब है कि एक बौद्धिक विमर्श, यानी कि हम दिमाग से कुछ सोच रहे हैं। क्योंकि देखिए, जब हम विशुद्ध रूप से किसी चीज को धर्म मान लेते हैं तो वह फिर एक आस्था का विषय बन जाता है, फिर उसमें बौद्धिकता की उतनी गुंजाइश नहीं रह जाती कि आप उसमें तर्क वितर्क करें। फिर तो यही होता है कि भाई, अगर आप अनुभव कर सकते हैं, आपकी आस्था है तो ठीक है, और अगर आस्था नहीं है तो वो भी ठीक है, फिर आप यहां आपके ऊपर है। इसलिए मैंने ये बात कही। आध्यात्मिकता की बात मैं इसलिए कह रहा हूं मित्रों कि मेरे लिए तो जो आध्यात्मिकता है वो जीवन का हर क्षण होता है। अगर हम अपने जीवन के क्षण में डूब जाते हैं और उसका आनंद ले सकते हैं तो हम आध्यात्मिकता का ही अनुभव कर रहे हैं। इसलिए मेरी बात आध्यात्मिकता से भी जुड़ी हुई नहीं है। हाँ, आप सबको इसमें कहीं इन सब की सुगंध मिल जाए तो यह आप लोगों की अपनी अपनी इच्छा है और आप लोगों का अपना अपना ग्रेटनेस है, अपनी अपनी सोच है। मित्रों, तो आइए मैं शिव, भगवान शिव के बारे में कुछ बातें करता हूं। एक तो मैं स्पष्ट कर दूं कि मैं सच पूछे तो यदि किसी देव के बारे में बात करूं कि मैं किसका आराधक हूं तो मुझे ये कहते हुए गर्व हो रहा है कि मैं शिव का आराधक रहा हूं। भगवान शिव के प्रति ही मेरी शुरू से बहुत बड़ी निष्ठा रही है। और आप कहेंगे कि ये शुरू से निष्ठा क्यों रही है, तो उसका कारण है, देखिए, मैं जो अभी आप सबसे बातें कर रहा हूं इसके पीछे जो एक भौतिक कारण होते हैं, यानी कि जो सांसारिक कारण होते हैं, जो हमें दिखाई देते हैं, जिनमें हम पलते बसते रचते हैं, आप उन कारणों को पकड़ने की कोशिश कीजिए, तभी हम किसी चीज की बौद्धिकता पर पहुंच पाते हैं। अदरवाइज तो हम ये मान करके चलते हैं कि नहीं, ये कोई बहुत अलौकिक है या कुछ ईश्वरी या पता नहीं क्या क्या नाम इसे देते हैं, वो है। मित्रों, सिंपल सी बात है कि मैं शिव का आराधक इसलिए बन गया कि हमारे घर से सटा हुआ ही, बिल्कुल हमारे ही कुएं के चबूतरे पर एक मंदिर था जो शिव मंदिर था, और वहां पूजा होती थी शिव की। तो शिव की पूजा करते देखा तो मैं शिव का भक्त हो गया, मैं भी पूजा करने लगा। और फिर जब हम पुराणों की कथाएं पढ़ते हैं तो मुझे कथाओं से पता लगा कि ये शिव जी तो बड़े सीधे सादे भोले भाले बाबा हैं, है ना, बड़े सीधे सादे, छोटी छोटी चीजों में खुश हो जाते हैं, इसीलिए इनका नाम है आशुतोष। आशुतोष मतलब थोड़ा, तोष संतुष्ट, थोड़े से ही संतुष्ट हो जाने वाले। तो मुझे लगा कि यार ये तो बड़े अच्छे भगवान है, ये तो थोड़े से ही संतुष्ट हो जाते हैं, और सबसे बड़ी बात है कि ये गुस्सा नहीं होते। ये तो बाद में पता लगा कि जब गुस्सा होते हैं तो कितने कमाल का गुस्सा होते हैं। तो मित्रों, तो अब एक बच्चा जो हमेशा थोड़ा सा भयभीत रहता है, अपने बड़ों से डरता रहता है, तो उसे अगर एक ऐसा भगवान मिल जाए जो कभी गुस्सा नहीं हो रहा है तो इससे बड़ी बात और क्या हो सकती है। और जिंदगी में तो जो खासकर डरे हुए लोग होते हैं उन्हें तो दयालु लोग सबसे ज्यादा प्रिय हो जाते हैं, तो मेरे लिए भगवान शिव प्रिय हो गए। फिर एक बड़ी बात जो हुई मेरे साथ वो ये कि मेरे जो दादाजी थे वो बहुत ही दयालु व्यक्ति थे, मतलब कुछ जरूरत से ज्यादा ही दयालु, और उनकी दयालुता से घर वाले परेशान होते रहते थे। और दादाजी मुझे इतना ज्यादा प्यार करते थे या मैं दादाजी को कितना ज्यादा प्यार करता था नहीं जानते। तो मुझे लगा कि यार जो भगवान शिव होंगे ये कहीं ना कहीं हो सकता है मेरे दादाजी जैसे ही हों। तो मैं अपने दादाजी में भगवान शिव को और शिव में अपने दादाजी को देखने लगा, तो भगवान शिव से और ज्यादा प्रेम हो गया, तब उसे कह लीजिए प्रेम हो गया या उनका मैं भक्त बन गया, जो भी रीजन रहा हो। तो मित्रों, इसके माध्यम से जो मैं बात कहना चाह रहा हूं वो कुल मिलाकर यह कि देखिए, किसी के प्रति भी जो हमारी आस्था होती है, अगर हम ध्यान दें तो उसके कारण पकड़ में आ जाते हैं। ठीक है, हम किसी एक पर्टिकुलर धर्म में, एक पर्टिकुलर समुदाय में जन्म लेते हैं, और स्वाभाविक है कि जिस समुदाय और धर्म में हम जन्म लेते हैं उसी तरह का वातावरण हमें अपने जीवन के आसपास मिलता है। खासकर जब हम बहुत छोटे होते हैं तो उस समय तो हम अपने वातावरण को बदल नहीं पाते, बाद में बड़े होकर के आप चाहे अफ्रीका चले जाएं, अमेरिका चले जाएं और अपने वातावरण को बदल लें तो बात अलग है, लेकिन तब तक तो हमारा निर्माण हो चुका होता है। मित्रों, तो भगवान शिव या किसी भी ईश्वर के प्रति जो हमारी आस्था का निर्माण होता है, हमें उन बातों को समझना चाहिए, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि और बड़े बड़ी गहराई के साथ लगता है कि धर्म ठीक है अनुभव की चीज हो, आस्था की चीज हो, मैं मानता हूं, लेकिन यदि उसमें आप तर्क लगा देते हैं या तर्क के आधार पर उसे स्वीकार कर लेते हैं तो आपकी आस्था कमजोर नहीं पड़ती, जैसा कि लोग घबराते रहते हैं, डरते रहते हैं, वह आस्था और गहरी हो जाती है, बल्कि गहरी के बजाय तो मुझे लगता है कि वह और ज्यादा मजबूत हो जाती है, क्योंकि उसे तर्क का भी सहारा मिल जाता है, वह ठोस जमीन पर खड़ी हो जाती है। मतलब मैं तो व्यक्तिगत तौर पर मित्रों यह महसूस करता हूं। अब आप देखिए कि भगवान शिव का जो स्वरूप है वो कितना मजेदार स्वरूप है। जब आप इतिहास पढ़ते हैं और या भारतीय दर्शन, भारतीय परंपराओं का गंभीरता से अध्ययन करते हैं, भारतीय धर्म के विकास का अध्ययन करते हैं, भारतीय समाज का अध्ययन करते हैं, तो आप पाएंगे कि भारत में जो प्राचीनतम स्वरूप किसी देव का मिला है, प्राचीनतम स्वरूप की बात मैं कह रहा हूं, है ना, मैं निर्गुण ब्रह्म की बात नहीं कर रहा हूं। देखिए, एक तो निर्गुण ब्रह्म जिसका कोई गुण ही नहीं होता, जिसका कोई स्वरूप नहीं होता, और दूसरे है सगुण ब्रह्म जिसका स्वरूप होता है। तो अगर ब्रह्म निर्गुण है तो सगुण नहीं हो सकता, और यदि सगुण है तो वो निर्गुण नहीं हो सकता, लेकिन दोनों है। निर्गुण को भी हम उतना ही मानते हैं जितना कि सगुण को मानते हैं। इस्लाम धर्म तो पूरी तरह से निर्गुण ब्रह्म को मानता है, आप सिखों को देख लीजिए, पूरी तरह से निर्गुण ब्रह्म को मानते हैं। तो फिर सच कौन है? दोनों में से एक ही सच होना चाहिए, लेकिन सच दोनों है, क्योंकि सगुण वालों ने भी नहीं देखा है। अगर देखा होता तो आप ये बताइए कि अगर आप महात्मा गांधी जी का चित्र बनाएंगे तो क्या चित्र अलग अलग तरीके का होगा? थोड़ा बहुत बनाने में अंतर हो सकता है, लेकिन देखने के बाद आप पहचान तो जाएंगे कि नहीं, ये महात्मा गांधी है, जवाहरलाल नेहरू तो नहीं हो सकते। तो भगवान के अलग अलग रूप क्यों है, अलग अलग चित्र क्यों है, अलग अलग स्वरूप क्यों है, इतने सारे क्यों है? तो सगुण वालों ने भी नहीं देखा है। तो अगर आप तार्किक रूप से सोचेंगे तो आपको बिल्कुल भिन्न चीजें दिखाई देंगी, और जब आप इसी तर्क का इस्तेमाल भगवान शिव पर करेंगे तो आपको बड़ी अद्भुत चीजें दिखाई देंगी। जैसा कि मैंने कहा कि सगुण के रूप में ये सबसे आरंभिक देव माने जाते हैं, जो हमें सिंधु घाटी की सभ्यता के दौरान जो वहां मोहरे मिली है उसमें ऐसा स्वरूप दिखाई पड़ा है कि एक महायोगी बैठे हुए हैं, उनके पास में एक सांड भी बैठा हुआ है और एक शेर भी है और त्रिशूल है, इस तरह का एक चित्र मिला है, जिसे भगवान शिव का एक प्राचीनतम रूप आप कह सकते हैं, और माना जाता है कि वही फिर आगे बढ़कर के वर्तमान शिव के रूप में हमारे सामने उपस्थित हुए हैं। तो जो सबसे बड़ी बात है, आप शिव के स्वरूप को कभी ध्यान से देखिए, जिसने भी बनाया है, शिव के स्वरूप की रचना की है, जो किसी की भी कल्पना रही हो, चलिए मैं मान लेता हूं आपकी आस्था के तहत कि उन्होंने दर्शन ही कर लिया हो, लेकिन किस तरीके से, किस बौद्धिक तरीके से, किस गहरे दार्शनिकता के साथ उन्होंने शिव की रचना की है, जब उस पर विचार करेंगे तो आपको लगेगा कि अरे, शिव तो एक तरीके से पूरी की पूरी तरह से प्रकृति और प्रकृति के विकास को व्यक्त करने वाला स्वरूप है। शिव की रचना देखिए, शिव की जब आप रचना देखेंगे तो आपको सारे के सारे प्रकृति के तत्व दिखाई दे रहे हैं, प्रकृति के तत्व दिखाई दे रहे हैं। वहां गंगा है, वहां चंद्रमा है, वहां सर्प है, वहां सांड है, वहां मृगछाल है, आप देख रहे हैं ये सारे के सारे प्रकृति के तत्व हैं। और जब आप इनके संयोजन को देखेंगे तो पाएंगे कि अगर एक है तो उसको बैलेंस करने के लिए दूसरा भी है, ऐसा नहीं है कि एक ही है, क्योंकि अगर एक ही होगा तो चीजें असंतुलित हो जाएंगी, बैलेंस करने के लिए दूसरा भी मौजूद है। आप देखिए कि अगर विष की ज्वाला है, आपको मालूम है कि शिव ने विष पान किया था, अगर विष की ज्वाला है तो उस ज्वाला को ठंडा करने के लिए निरंतर गंगा भी प्रवाहित हो रही है, या आप कह लीजिए कि चंद्रमा की शीतलता है, दोनों में से आप किसी को भी ले लीजिए। अगर सर्प के फनों से निकलने वाला जहर है, फिर से जहर, तो वहां भी फिर कह लीजिए कि चंद्रमा की शीतलता है या गंगा की शीतलता है या और गंगा का जो निर्मल और जो पवित्र और शीतल जल है वो लगातार उस ज्वाला को ठंडा करता रहेगा। आप देख रहे हैं कि किस तरह से विरोधाभास है। शिव ने विष का पान भी किया और विष का पान नहीं भी किया, विष पिया, कंठ तक रोक लिया, उदर तक नहीं उतरा। तो अगर वह उदर तक नहीं उतरा तो पिया भी नहीं, लेकिन जिस पात्र में उनको विष दिया गया था अगर उस पात्र से विष गायब हो गया और कंठ उनका नीला पड़ गया तो इसका मतलब है कि उन्होंने विष को पी भी लिया। तो विष पिया भी नहीं और विष को पी भी लिया। मित्रों, नहीं लगता कि आपको ये शिव की विचित्रता है? फिर उन्होंने कभी उस विष का वमन नहीं किया, उस विष की उल्टियां नहीं करके निकाल दी, उन्होंने अभी तक धारण किए हुए हैं। इसका मतलब है मित्रों कि यदि दुख, तकलीफ, परेशानी अगर है और अगर हम उससे प्रभावित नहीं होना चाहते हैं तो सीधी सी बात है कि उसे आप अपने कंठ में रोक लीजिए, उसे नीचे तक उतारने की जरूरत नहीं है, वो आपका कुछ भी नहीं बिगाड़ सकेगा। तो दोस्तों, इस तरह के ढेर सारी व्याख्याएं भगवान शिव की जा सकती हैं। वक्त बहुत ज्यादा व्याख्या की इजाजत नहीं दे रहा है, लेकिन ये जरूर है कि जो हमारे शिव हैं वो अपने स्वरूप में जो जीवन है, जो अध्यात्म है, जो धर्म है, इन सब की बहुत जबरदस्त रूप से तार्किक व्याख्या प्रदान करने की शक्ति रखते हैं। शिव को आधार बनाकर हम जीवन की बहुत तर्कपूर्ण व्याख्या कर सकते हैं और मुझे लगता है कि यही शिव की सबसे बड़ी महानता है। और आप जानते हैं कि उनके साथ तो कितनी कथाएं जुड़ी हुई हैं और जो कथाएं भी हैं वो बहुत ही भौतिक जीवन जैसी कथाएं हैं, उसमें कोई आपको बहुत अलौकिकता और परालौकिकता और रहस्यमय चीजें दिखाई नहीं देंगी। और मित्रों, कुल मिलाकर के यही भौतिकता, यही लौकिकता जब शिव बन जाती है तो वह भगवान में परिवर्तित हो जाती है और यही भौतिकता अलौकिकता बनने की ताकत रखती है। तो दोस्तों, इसी के साथ ही मैं आज के इस लाइफ मैनेजमेंट को यहीं समाप्त करने की आप सबसे अनुमति चाहूंगा। नमस्कार।